أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیا ہوگا آج کے سبق میں کوئی اپنے ایک یعنی ایک فیلنگ جو آپ کو اس سبق کے ترجمے کو سننے سے آئی کیا آئی؟ جی ادھر سے جی ہما جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اوکے جی آپ کیا نام ہے ان کا فرحت مجھے کلپ اللہ کا عذاب اگر آئے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا اس سے کسی کو. جی عارفہ عارفہ جی آپ سامنے سے آن لائن پہ بھی لکھیے کہ تلاوت کے دوران آپ کو کس آیت کے اوپر آپ کی توجہ گئی. جی سوری ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پہ ایک دفعہ چلنا شروع ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ ہم پہنچ گئے کہیں بھی رک سکتے ہیں. جی اور ادھر سے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا. جی عالیہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں آنے کی خواہش پیدا ہوئی. جی آپ نوشین نام ہے نا آپ کا. انسان ناشکرہ ہے ٹھیک ہے. آن لائن سے بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ شیطان سے بچتے رہنا ہے اور انسان ناشکرہ ہے. جی ادھر سے آپ نسرین انسانوں کی گمراہی اور غفلت کا ذکر ہے ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی آیتیں ہیں نا صرف 10 آیات ہے لیکن اس میں اتنے لوگوں کی مختلف چیزوں پہ نظر گئی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے آج کے سبق میں کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور شعور کے ساتھ ترجمہ سنا کریں. ایک ایک منٹ آپ کا جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے اندر جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اس کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ادھر 2 چیئرز خالی ہیں کوئی پیچھے سے آ جائے والنٹیئرلی آگے تو اچھا لگے گا. ادھر 1 چیئر خالی ہے آس پاس آگے آ جائیے ٹھیک ہے. چلیے اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ لیسن کو لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پھر جو بھی مین تھیم ہے اس کو بھی دیکھیں گے. جی آن لائن پہ ایک دفعہ ڈبل چیک کر لیجئے کہ وائس کلیئر ایوری تھنگ نارمل ہے. اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے شروع کرتے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 146 آيت نمبر 66 سے 77 سورة بني إسرائيل. لیسن نمبر 146 آيت نمبر 66 to 77. آيات پہ جانے سے پہلے آيتوں کا خلاصہ. پچھلے سبق میں ہم نے شیطان کے ہتھ کنڈوں کی بات دیکھی تھی کہ شیطان کس طرح ہمارا دشمن ہے اور اس کی نظر ہمارے مال اور ہماری اولادوں پہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور اس دنیا کو ہمارے لیے اتنا اہم کر دیتا ہے کہ بہت بڑی آخرت ہمارے پیچھے جاتی ہے. یہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے کچھ دلائل ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کفا بی ربی کا وکیلا، تیرا رب تیرے کام بنانے کے لیے کافی ہے. تو آیت 66 سے پھر اللہ تعالیٰ دلائل دیں گے کہ آؤ دیکھو اس دنیا کے کام میں کس طرح سے کر رہا ہوں، تو کیا میں تمہارے کام نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفوں کو جاننے کے بعد جو اگلی چیز ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں وہ کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت دکھ کے وقت میں آسان ہو جاتی ہے. جب انسان کسی بھی غم میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے تعارف زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کی زندگی خوشیوں میں ڈھلتی ہے تو اس وقت پھر اس کی تبدیلیاں زندگی میں جاتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے کہ اگر ایک خوشی ملنے پر تم منہ پھیر گئے تو کیا دوبارہ کبھی زندگی میں تمہیں ہم سے واسطہ نہیں پڑے گا. اگلا ٹاپک اس میں آئے گا کہ بنی آدم کو عزت دی، اس سے کیا مراد ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ کیا واقعی انسان قابل عزت ہستی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ بات نامہ اعمال کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی نامہ اعمال کا ذکر تھا، یہاں بھی ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. گویا کہ ایک شعور کی زندگی بسر کرنے کو بتایا جا رہا ہے. پھر اگلا ٹاپک ہے کہ جو اس دنیا میں ہدایت سے اندھا رہا آخرت میں جنت سے دور رہے گا، اللہ اس کو جنت کا راستہ دکھائیں گے ہی نہیں. اور پھر دشمنوں کی سازشیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرتے تھے، اور اگر کوئی کسی کے کہنے پر اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کتنی قابل رحم ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب آیتوں کو ساتھ لے کر. بہت آسان سبق ہے، اور وہی بات ہے کہ دماغ پہ لینے کی بجائے دل پہ لینے والا سبق ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے دوران ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نشانی ہے اس پہ غور و فکر کرنا آسان ہو جائے. آیت نمبر 66، ربکم اللذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے. اگر ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی کوئی انسان یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی جو اتنی نرم چیز ہے اس کے اوپر منو ٹنو وزن والی ایک کشتی تیر سکتی ہے. وہی پانی جس کے اوپر اگر ہم ایک سوئی رکھیں تو وہ اس میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک کشتی نہیں ڈوبتی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو کہتے وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے. کن اور فیکون کا مالک ہے. کشتیوں کا پانی میں چلنا جتنا ناممکن ہے اتنا ہی اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کی نشانیوں پہ غور نہ کر کے جنت میں جانا ناممکن ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نماز روزے سے ہی اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں 24 گھنٹے کا تدبر غور و فکر کئی جگہ ناممکنات کو ممکن میں بدلتا دیکھنا ہم سب کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پیچھے کہا کہ توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے، اب کہا جا رہا ہے تمہارا حقیقی رب وہ ہے. بتایا کیا جا رہا ہے کہ جو ذات اتنے ناممکن کاموں کو ممکن بنا رہی ہے، پھر تم اس پہ اعتماد کرو، تمہارا بھروسہ اس پہ ہو، اسی سے رہنمائی لو، اسی کی توفیق، اسی سے توفیق مانگو. اور جس نے اپنے رب پہ نظریں لگا لیں پھر اس کو کسی اور ذات کی ضرورت نہیں رہے گی. کتنی بڑی آزمائش زندگی میں کیوں نہ آ جائے، جس کی نظریں رب پہ ہوتی ہیں وہ نکل جاتا ہے. लगता है ऐसे कि ये मुश्किल जानी कोई नहीं, लेकिन ऐसे जाती जैसे आटे में से बाल, शर्त एक है कि नजरें अल्लाह ताला पर हों। यहाँ जो लफ्ज है युस जी, इसका रूट जा जीम वाव है, अज़जा युस जी से है, मस्तर है अज़जा। इसका मतलब होता है नरमी से चलाना, हवाओं को हांकना, बादलों को चलाना। और यहां मिन फजली ही से मुराद फजल यानी माल, दुनिया का बताया गया कि दुनिया का भी माल कमाओ, बुरी बात नहीं है। इस जाउन कहते हैं अरबी में काम आसान होने की वजह से पूरा हो जाना। आप सोच रहे होंगे कि कश्ती का चलना और हवाओं का चलना, ये दो चीजों का इधर इकट्ठा जिक्र क्यों किया? तो शायद आपको ना पता हो कि अगर हवाएं रुक जाएं तो कश्तियां चलना रुक जाएंगी। ये जो कश्तियां चलती हैं ना, ये हवाओं के रुख पे चलती हैं, चाहे ऑपोजिट हो या दूसरी हो, जोर ज्यादा लग जाता है, लेकिन अगर कश्ती रुक जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से फिर एक इंसान दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता। अगर ऊपर से थोड़ा सा इस ताल्लुक को जोड़ना हो तो थोड़ा समझ लीजिए कि इब्लीस पहले दिन से आदम की नस्ल के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि इसको आरजुओं और तमन्नाओं और झूठे वादों के दाम में फांस कर राह रास्त से हटा दे, और ये साबित कर दे कि वो इस बुजुर्गी का मुस्तक नहीं है जो इसे अल्लाह ताला ने दी। अब ऐसे वक्त में जो चीज बंदे की मदद कर सकती है शैतान के मुकाबले में, वो रब की बंदगी है। जितना अपने आप को हैंड्स फ्री करते जाएंगे ना, उतना अल्लाह की मदद आपके सामने ज्यादा आती रहेगी। लिहाजा इन सारी बातों को सुनते वक्त चुपके चुपके अपने लिए दुआएं करें, क्या मेरे मालिक तू इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो मेरे छोटे छोटे कामों की तेरे लिए क्या हैसियत है, तू मेरी इसमें मदद फरमा। और आखिर में देखिए कि हकीकत है कि तुम्हारा रब तुम्हारे हाल पर बड़ा मेहरबान है। कैसी बात कह दी, ऐसे नहीं लगता कि जैसे हर वक्त तो उसकी रहमत ही होती है, कभी कभी पकड़ आती है। आप देखिए कि हम सेहतमंद तो अक्सर रहते हैं ना, बीमार तो कभी कभी होते हैं, भूख तो कभी सहनी पड़ती है, पेट तो अक्सर ही भरा रहता है, कभी कभी कोई गम कोई सदमा आता है, हर वक्त तो आफियत ही होती है, ये अल्लाह तला का रहम है। और दूसरा यहाँ रहम अगर आयत के साथ देखे तो कश्तियों में बैठकर वापस निकल आना, ये अल्लाह का रहम है। और इसी तरह अब इस रहम का ताल्लुक अगले हिस्से से भी आयत के जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो ये उसका रहम है तुम पर कि तुम्हें उसने इतना कुछ जो दुनिया में दिया था, ये सारी चीजों से बचकर तुम समंदरों से खैर व आफियत के साथ गुजरते हो, लेकिन इंसान का रवैया क्या? अब अगली आयत को साथ लेके देखेंगे, आयत 67, व इजा मस्सकुम दुर्रु फिल बहरी, और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है समंदर में, मसलन कश्ती तूफान में गिर जाती है, मौत के साए सामने दिखने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं, तूफान आ जाता है, डूबने का खौफ है, कश्तियां डोलने लगती हैं, कोई भी तकलीफ सोच सकते हैं आप। दल्ला मन तदून इल्ला इया, गुम हो जाते हैं वो सब जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय उस एक अल्लाह के। कितनी बड़ी हकीकत है, उस वक्त तुम्हें अपने माबूदों में कोई याद नहीं रहता। आम हालात में जिन्हें तुम अपना मददगार समझते थे, इस दुख के वक्त में वो तुम्हारी मदद कैसे करें? नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। लेकिन फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्री, फिर जब वो तुम्हें बचा कर ले आता है खुशकी की तरफ, तो आरत तुम चौड़े हो जाते हो, मुंह फुला लेते हो। ये जो लफ्ज है ना आरदा, अरद कहते हैं चिक को, ये जो चिक्स होते हैं ना गाल। अब आप मुझे सामने से देखेंगे तो हो सकता है आपको मेरा फेस पतला लगे, लेकिन अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको तो मेरा फेस चौड़ा दिखेगा, साइड पोज हमेशा चौड़ा होता है। तो आरदा में एक तो क्या है कि यूं बस जहां बैठे थे हूं करके मुंह पीछे करते हो, और दूसरा जो टिपिकल हमारे उर्दू में लफ्ज है कि तुम चौड़े होने लगते हो। दोनों में एक ही चीज है, जब कोई मुंह फेरता है तो उसका मुंह आम से चौड़ा दिखने लगता है, मुराद यह कि तुम मुंह मोड़ लेते हो, फिर तुम्हारे माल और तुम्हारा वक्त गैरों के लिए लगता है, फिर तुम शैतान को अपने माल में इस तरह से शरीक कर लेते हो कि तुम लगता ही नहीं कि इसमें तुम्हारा अल्लाह ताला का कोई हिस्सा भी था। क्या सच बताएं, हकीकत में ऐसा इंसान का रवैया नहीं है। वकान अल इंसान, किसी को दुख में रब याद रहे। कुछ लोग तो दुख में जब जाते हैं ना, जब डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि नाउज बिल्ला, जिस तरह अब हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह हमारा रब भी कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा ऐसे वक्त में जब कोई इंसान अल्लाह से दूर होता है ना, तो समझ ले कि उसने तो अपने ऊपर हिदायत के रास्ते सारे बंद कर लिए। कोई एक वक्त अपनी जिंदगी का याद करे यहां बैठकर, जब आप खुशी में बहक कर रब को भूल गई, चाहे वो वक्ती तौर पे हो, एक इंस्टेंस भी होता है, 1 मिनट, 1 सेकंड, एक लम्हे की भूल, वो कोई एक नमाज भी हो सकती है। बल्कि आप सब सोचिए, मेरी कोई नमाज जो मेरी किसी खुशी की नजर हो गई, किसी शादी में थी तो वजू नहीं करना था, दावत में थी तो जाना नहीं था, मेहमान आ गए तो खिलाती रही पिलाती रही, तो इस आयत को सोच ले। हम जब इन आयतों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये मुशरिकीन ने मक्का बड़े बड़े गुनाह करते थे, लेकिन कभी हम अपनी जिंदगियों में तो देखे, मुझे तो ऐसे लगता है कि ईद की दावतें, मेहमानों में, और अगर पढ़ भी पाते हैं तो वो किस किस्म की नमाजें होती हैं, इसको हर एक खुद जानता है। देखिए, बहुत ज्यादा थुड़दिला इंसान होता है जो किसी को जरा सी नेमत मिलने पे भूल जाए। आप अपने ऊपर लेके सोचें, आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा आपका फर्द है कि जो बस हैंड टू माउथ था, फिर अल्लाह उसको कोई खुशी दे और उस खुशी में उसकी चाल बदल जाए, उसकी बात का अंदाज बदल जाए, और वो किसी दूसरे को लिफ्ट ही ना कराए। हम ऐसे लोगों को अमूमन क्या कहते हैं? नौ दौलतिया, 4 पैसे आ गए इनके हाथ घर में तो इनकी शक्ल ही बदल गई है। जब हम खुशियों में रब को भूलते हैं, तो फिर आप बताइए, क्या उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते हमारे बारे में ये नहीं सोचते होंगे? और हमें ये भी नहीं पता कि उस खुशी के बाद अगले ही दिन हमारे पास कितना बड़ा गम आने वाला है। तो इतना कमजोर इंसान अल्लाह को भूल कर जाएगा किधर? करना क्या है? अल्लाह से मदद मांगो, हर वक्त अल्लाह की जरूरत को अपनी जिंदगी में महसूस करो, उसके बगैर तुम बच नहीं सकते। वो ऐसी जात है कि जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। चलो खैर है, वहां से निकले, अब आगे क्या होता है? अगली आयत को भी जरा देख लीजिए कि कोई आखिरी मौका नहीं था अल्लाह ताला के साथ मामले का, बल्कि आयत नंबर 68, अफ अमीन तुम, क्या तुम अमन में आ गए? ये लफ्जी तर्जमा मैंने किया है, हालांकि इसका मानी क्या होता है? क्या तुम बेखौफ हो गए? क्योंकि जब कोई किसी चीज से बेखौफ होता है तो खुद को सिक्योर फील करता है ना। मानी इधर पता क्या, अफा मिन तुम का, क्या तुम खुद को बहुत सिक्योर समझते हो? तुम बहुत महफूज हो? क्या तुम इस बात से खौफ हो गए हो? यक्सिफ बिकुम जानिबल बर्री, कि वो धसा दे तुम्हें कहीं खुश्की में, यानी समंदर में जाते ही तो वाकई एहसास होता है डूब जाएंगे, लेकिन क्या खुश्की पे तुम्हें रब नहीं पकड़ सकता? चलो समंदर में बैठे, हो सकता है अल्लाह अल्लाह की तकरार हो जुबान पे, लेकिन खुशकी पर आते ही फिर अल्लाह की नाशुक्री करते हो, इससे मुंह मोड़ लेते हो। क्या तुम्हें इस बात से खौफ नहीं आता कि अल्लाह तुम्हें खुश्क जमीन के अंदर ही धंसा दे? कारून को उसने को पानी में तो नहीं डुबोया था, जमीन फटी थी उसके लिए। क्या खुशकी पे लोगों को मौत नहीं आती? वो कहते हैं ना कि आसूदा साहिल तू है, मगर शायद जो तुझे मां तूफान होते हैं, अचानक एकदम पकड़ आती है और इंसान चल पड़ता है, गोया कि तुम जमीन पर भी महफूज नहीं हो। पहली आयत में क्या था? पानी में महफूज नहीं हो। आयत के इस हिस्से में आ गया, खुशकी पे भी महफूज नहीं हो। अब एक तीसरी सूरत, औ युरसिला अलैकुम हासिबा, या वो तुम पर भेज दे कंकर बरसाने वाली तेज हवा। ये जो हासिबा का लफ्ज है ना, हसब से, हसब अरबी जुबान में कंकरी को कहते हैं, कंकरी छोटी छोटी जो होती हैं रॉक्स, और हासिब कहते हैं फेंकने वाली, वो बारिश जिसमें बर्फ के ओले हों, या वो आंधी जिसमें कंकरियां और पत्थर हों। आज के दौर में समझना तो सैंड स्टॉर्म, सहराओं में जब रेत का तूफान आता है ना, तो आंखों के अंदर रेत चली जाती है। अल्लाह कहता है तुम बचकर कहाँ जाओगे, सुम्मा ला तजिदु लकुम वकीला, फिर तुम ना पाओ अपने लिए कोई बचाने वाला, कोई तुम्हारी वकीलत नहीं, वकालत नहीं करेगा, रोकने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला। तो तुम तो देखो अल्लाह की पकड़ में हो। कितनी सजाएं हो गई? तीन। अगली आयत पे चलिए, एक और भी दिखेगी। अम अमीन तुम, या तुम बेखौफ हो गए, बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत इंजॉय करते हो। यईदकुम फीही तारतन उखरा, के इससे कि वो फेर ले जाए तुम्हें इसी समंदर में दूसरी बार। अब रिपीटिशन है, समंदर से बचा लिया तुम्हें, तो क्या अब दोबारा किसी ट्रिप पे नहीं जाओगे? दोबारा कश्ती में नहीं बैठोगे? दोबारा समंदरी जहाज में नहीं बैठोगे? फिर क्या होगा? फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिन अर्रीह, फिर भेज दे तुम पर हवा का तेज झक्कड़, जोरदार झक्कड़। ये जो कासिफन है ना, कसफ से है, तूफानी हवाओं को कहते हैं, तोड़ने वाली। कातियातुन के मानी में पता कहते हैं ना, तोड़ने को, तो कातिया कासिफा एक ही साउंड है, तोड़ने वाली। वो हवा जो दरख्त तोड़ते, थंडर स्टॉर्म होता है ना, यहां मुराद है वो हवा जो कश्ती को तोड़ दे। यानी अल्लाह जब इंसान को एक मौके पे छोड़ देता है, तो इंसान ये कभी ना सोचे। कि मैं जीत गया, वो गलबे वाला है। सूरत जिन में, सूरत रहमान में आप पढ़ते हैं, या माशरुल जिन्नी वल इंसी इन इस्तता तुम, ए जिन्नो इंस, अगर तुम कर सको तो भागो, अल्लाह की पकड़ से भागो, लेकिन तुम नहीं बच सकोगे। लिहाजा फरमाया फयुग्रिककुम बिमा कफरतुम, सो वो तुम्हें गर्क कर दे तुम्हारे उस कुफर की पादाश में। सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबीया, फिर न तुम पाओ अपने लिए हमारे खिलाफ इसकी वजह से कोई ताकुब करने वाला। तबीया लफ्ज बड़ा खूबसूरत है। दुनिया में जब कोई किसी को पकड़ लेता है या उसकी गलती से नुकसान हो, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? यहाँ इन मुल्कों में तो बहुत मारूफ है, सू करना। ये तबीया जो है ना, ये सू करने वाला है। हम तुम्हें किसी तरह से भी पकड़ लें, है कोई जो हमसे इंतकाम ले, कोई हम पे सू करे, कोई हम पे मुकदमा करे। तबीया का जो लफ्ज है ना, पीछा करने वाला, इससे मुराद होता है पीछे करना। यानी तुम पे हम जो पकड़ करेंगे, तो कोई वकील है तुम्हारी तरफ से जो हमारे खिलाफ मुकदमा लड़े? ये मुराद है। सच बताएं, है कोई? सबको अल्लाह तोड़ मोड़ के बिस्तर पे डाल दे, हम कुछ कर सकते हैं? आज हमारी जिंदगी में आप देखिए कि इतनी खुदा फरामोशी दिखती है आम हालात में, इल्ला माशाल्लाह, जिसको भी अल्लाह बचले इस चीज से वो और बात है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह के आगे बड़ा ही मजबूर है। इतना कमजोर है कि अल्लाह की जात ने उसको दुनिया में ये जीने का हक दिया हुआ, जो हमारा हक नहीं था। हमने अल्लाह सुब्हान तआला को कुछ भी नहीं दिया कि वो हमसे इस तरह का मामला करें, लेकिन आप देखिए कि हम कितनी जल्दी मजबूर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर हम अल्लाह से मुंह मोड़ लेते हैं। बस तब आप देखिए कि हमारी जिंदगी में इस किस्म के मामले आते हैं कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं, लेकिन अमूमन हम लीस्ट मिनिमम पे रहते हैं। इरम ये लगाइएगा स्क्रीन, अगर बाद में मुमकिन हो तो। कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं कि जिस वक्त अल्लाह सुबहाना तआला हमारी जिंदगी में ऐसे हालात ले आता है कि अगर हम थोड़ी सी अच्छी चीज चूज कर लें, तो हमें अल्लाह ताला बहुत ज्यादा उसके सकता है। दिन पहले किसी ने वीडियो भेजी, नहीं अगर मुमकिन हुआ, इसको पढ़ते हुए एकदम मेरे दिल में आ गया कि हम कितने मजबूर समझते हैं खुद को, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह सुबहाना ताला ने इतना आजमाया हुआ है। यानी एक हैंडीकैप शख्स है, उसके पाँव भी मुड़े हुए हैं, चल सकता है लेकिन गिर जाता है चलते चलते, कद भी उसका छोटा है, हाथों से भी कोई चीज नहीं पकड़ सकता, लेकिन अभी आप देखेंगे कि किस तरह से वो मस्जिद में जाता है, फिर मस्जिद से ऊपर जाता है, फिर वो कैसे कुरान पढ़ता है। जब मैंने उसको देखा तो मैं सोच में पड़ गई, और मैंने उस वक्त खुद से पूछा, क्या मेरे पास कोई उजर मौजूद है? क्या हकीकत में मैं अपने आप को इन छोटी छोटी चीजों में डालकर बस दफा कितनी नेकियों से महरूम कर लेती हूँ जो सरासर मेरे काबू में होती हैं, जो सरासर मेरे इख्तियार में होती हैं। लेकिन बात यह है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। और मैंने देखा है कि जिसको अल्लाह ने दुनियावी तौर पे जरा सा महरूम रखा होता है ना, उसका हौसला बहुत बड़ा होता है। अल्लाह की ज़ात जो है ना, ये किसी के साथ जुल्म नहीं करती। कुछ लोगों को जिस्मानी कमजोरियां मिलती हैं ना, रहते हैं, और जब ऐसे लोग कोई काम करते हैं तो फिर मैं और आप, हम अपने आप को कैसे उन चीजों से रोक सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। खास तौर पर देखिए कि नायतों में बार बार आपको एक ही बात समझ आ रही होगी, पकड़ पकड़ अल्लाह की पकड़। अल्लाह तुम्हें पकड़ सकता है, तुम अल्लाह से भाग के कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह की जात ने तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है, लेकिन तुम उसकी नेमतों को सही तौर पे इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हो। और जब हम अल्लाह ताला की जात को पीछे डाल के जीते हैं ना, तो याद रखिए कि हम खुद के देते हैं कि तू हमें पकड़, हमारे लिए अपनी पकड़ का रास्ता आसान कर दे। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनके पास बजाहर हमारे ख्याल में हमसे कम है, तो लेकिन आप फील करेंगे कि ऐसे लोग अल्लाह की रजा पे राजी रहकर बस दफा वो नेकियां कमा जाते हैं जो हम इतनी नेमतों को पाने के बावजूद भी नहीं हासिल कर पाते। हम अपना मुहासबा करें, हर एक खुद से पूछे। पहले तो चंद सवाल खुद से करें, क्या वाकई मैं मजबूर हूँ, क्या वाकई मैं दुखी हूँ, क्या वाकई मेरे उजर सच्चे हैं। कोई भी उजर, देखिए आप अपने ऊपर भी ले रहे हैं ना, साथ ही साथ अपने बेटों पे भी लें, शौहर पे भी लें। फजर की नमाज से शुरू करते हैं, फजर के वक्त नमाज घर में पढ़ते हैं या देर से पढ़ते हैं, क्या उजर शरई है, क्या हकीकत में इतने ही मजबूर हैं कि हम नमाज को देर से पढ़ें या घर में पढ़ें या हम उसको पढ़ें ही ना। जो पढ़ता नहीं उसका तो फिर हाल ही अल्लाह ताला रहम करेगा तो सही होगा, वरना तो उसका हाल किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये सारी चीजें रखें, इरम आवाज भी चाहिए होगी। ये वो चीजें होती हैं जो हम सब की जिंदगी में तब्दीली लाती हैं। ये इंशाल्लाह हम छोटा सा क्लिप देखते हैं, बेसिकली इसके साथ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ भी दिखेगा और बल्कि चले आवाज के बगैर भी देख सकते हैं, इसलिए कि इसको आपने ज्यादा तस्वीरों से ही देखा। और इंशाल्लाह इसका लिंक बाद में भेज देंगे, लेकिन सिर्फ आप देखिए, लाइट बंद कीजिए। मैं सब बोलती रहती हूँ कि एक बार लड़का है या मर्द कह लीजिए, पाँव मुड़े हुए हैं, कैसे रिंगता हुआ आया है, और उसके बाद सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उसने, इस तरह जैसे बच्चे लेट के पेट के बल सीढ़ियां चढ़ते हैं। वाइल वी कैन बट, ये लिखा हुआ पढ़ लीजिए, सामने लिखा आ रहा है इंग्लिश में, क्योंकि पीछे जो ब्रदर है वो अरबिक में इसको कह रहे हैं। कहते हैं कि ये पहली रो में जाने का आदी है। चले मैं इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ और मैं इसको बल्कि उर्दू में हम कर देते हैं, ट्रांसलेट हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, इसको शुरू से देखते हैं। ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक इफ आई इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड इन जर्मन। ये जो एक स्पीकर हैं, ये अपने एक दोस्त से हमारा तारुफ कराते हैं जो यमन में रहता है। ही इज हैंडीकैप बट ही वॉक टू द मॉस्क एवरी डे। ये अबाहत यानी हैंडीकैप है लड़का, लेकिन हर दिन मस्जिद में चल के जाता है। ये देखिए, एंड समटाइम ही क्रॉल्स टू इट इन ऑर्डर टू रीच देयर। यानी बाज औकात इसको चलने की बजाय बच्चों की तरह क्रॉल करना पड़ता है। ये देखिए हम कितनी जल्दी मजबूर हो जाते हैं। ये देखिए अब खड़ा होने की सूरत में भी, अब जूते कैसे उतार है वो, यानी वो खड़ा होकर जूता नहीं अपना उतार सकता। ही गेट टायर्ड बट ही डज नॉट मिस तकबीरात अल एहराम फर्स्ट तकबीर ऑफ द ब्रेथ। यानी वो थक जाता है लेकिन वो पहली तकबीर जिसको तकबीरे उला कहते हैं उसको मिस नहीं करना चाहता, उस वक्त मस्जिद में पहुंचना चाहता है।
हाँ
ही विशेज टू प्रे फजर इन दी मॉस्क बट हिज फैमिली डज नॉट अलाउ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन. ये ख्वाहिश रखता है कि मैं फजर की नमाज जमात से पढ़ूँ लेकिन इसके घर वाले इसको इजाज़त नहीं देते क्योंकि इसकी सेहत ऐसी है. ये देखिए है कोई उजर हमारे पास. डू यू थिंक दिस इज ऑल ऑफ द मैटर, यानी वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्या ख्याल है बस मामला इतना ही है, तो मामला इतना नहीं है. ये देखिए सब सजदे में गए हैं वो भी पूरी कोशिश. फर्स्ट रो ही कम्स अर्ली एंड रिसाइट द कुरान. सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी मस्जिद में पढ़नी है और पहली रो में जाना है, वक्त से पहले आता है और कुरान की तिलावत करता है. अब इसको आप कुरान पढ़ते हुए देखिएगा. एंड ही डज नॉट स्टॉप हेयर बट आफ्टर मगरिब एवरी डे ही गोज अप द स्टेयर विद ग्रेट डिफिकल्टी. यानी मस्जिद में जाके कुरान भी पढ़ता है पहले, फिर मगरिब की नमाज में वक्त से पहले जाता है और मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर में जाकर क्या करता है ये आप देखेंगे. ये देखिए अब ये ऊपर जा रहा है. एंड ही कैन रीच दोनों हाथ और पांव इस्तेमाल करके वो मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर में जा रहा है. व्हाट इज देयर ऑन द सेकंड फ्लोर, क्यों जाता है? अ कुरान मेमोराइजेशन सर्कल. यानी वहां वो जाता है इसलिए कि वहां कुछ लोग बैठकर कुरान पढ़ते हैं और ये उनके साथ बैठना चाहता है. He participating in the Quran memorization circle. यानी वहां जाकर ये लोगों के साथ कुरान पढ़ना चाहता है. Even though he is paralyzed and speak with difficulty, but he pushes himself to do so. बोलने में भी इसको तकलीफ है लेकिन आप देखेंगे अभी इसके एक्सेंट से कि ये किस तरह कुरान पढ़ता है. And he can utter the Quran with his voice. Along with the hardship that comes with it. ये देखिए इसके पढ़ने का अंदाज देखें, ये बोल नहीं सक रहा सही, हमारा उजर की तरह. हम कब बचेंगे? मैं सोचती हूँ अल्लाह इतनी नेमतें और इतने नखरे, इतनी तुझसे हमारी मुंह फेरने और एराज. ये भी तो इंसान है ना, अब नमाज पढ़ रहा सबके साथ. कमाल हॉर यू, इसका टीचर अब इसको पूछता है. ये कहता है ऑल प्रेजिस टू अल्लाह ताला, तारीफ अल्लाह की है. मे अल्लाह सुब्हान तआला प्रिजर्व एंड ब्लेस यू, मतलब उसको दुआ दे रहा है. इज योर हाउस क्लोज और फार, कहता है तुम्हारा घर करीब है या दूर. इज इट देयर, किधर है. डू यू गेट टायर्ड व्हेन यू गो, ये पूछ रहा है क्या तुम थक जाते हो जब इधर आते हो या जाते हो. अ लिटिल बिट, कहते थोड़ा सा. मे अल्लाह सुब्हान ग्रांट, यानी वो कहते तुम्हें अल्लाह ताला ठीक कर दे, आमीन. Do you come to the masjid every day? कहते हर दिन आते हो. Do you arrive before the call for the prayer? कहते वक्त से पहले आते हो. It depends, sometime before or sometime after. वो कहता कि depend करता है, कभी पहले आ जाता हूँ कभी बाद में. And it depends sometime before or sometime. May paradise not pass you by. अब देखिए अल्लाह को प्यार है कि इसके पाँव देखिए. I see there is a pain on. और देखिए खुश कितना है. आई सी देर इज पेन ऑन योर फीट, दिस इज ड्यू टू रबिंग ऑफ द फ्लोर ऑन द ग्राउंड. यानी वैसे ही हैंडीकैप है लेकिन कहते हैं पाँव जब जमीन पे छिलते हैं ना उसकी वजह से स्किन पे जो जख्म बड़ा हुआ है. अल्लाह अकबर. व्हेन ही वियर्स शू इट रिप्स क्विकली, यानी ये देखिए अब यानी पाँव भी छिल जाते हैं उसके, हाथ भी देख लीजिए सीधे नहीं है. अब वो शुक्रिया अदा कर रहा है इसका. कम ऑन गेट अप, लेट मी हेल्प यू, गिव मी हैंड प्लीज. आप सोचिए जरा, हम भी तो ऐसे हो सकते थे, हमारे बच्चे भी तो ऐसे हो सकते थे, हमारे मर्द भी तो ऐसे हो सकते थे. ये भी तो इंसान है ना. वो कह रहा है कि माशाल्लाह तुम फास्ट हो, यानी तुम तेज चल रहे हो. टीचर उसको उसकी हौसला अफजाई कर रहा है. No, you won't be. क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। सिर्फ सोचने का मुकाम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं इन बातों पे। कहते हैं तुम ऐसा रेस करना चाहते हो, ऐसे ही उसको खुश कर रहा है। आफ्टर ही प्रे ईशा ही रिटर्न्स होम, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ईशा की नमाज के लिए वो जब आता है तो उस वक्त क्या हो रहा है इसको भी देख लें। आप सोचे फजर से लेके मगरिब तक और अब ईशा, हम हो तो के बैठ जाओ ना घर में, एक तो पढ़ ली है ना, तो दूसरी की क्या जरूरत है। अंधेरा बहुत सख्त होता है रात को जब आता है। एंड हाउ विल ही बी एबल टू अराइव, ये कैसे वहां पहुंचेगा घर में। ही हैंग्स ऑन एनी पर्सन लीविंग द मॉस्क हु कैन हेल्प रीच, किसी को भी मस्जिद में साथ लेता है जो मस्जिद से निकलता है, ताकि उसका हाथ पकड़ कर ये घर आ सके। विद सम हैंड लाइट, हाथ में बल्ब पकड़ के क्यों करते, इट इज बिकॉज ही लव वट अल्लाह वॉन्ट। ये अल्लाह का घर है, यानी जिसको अल्लाह से प्यार है उसको अल्लाह के घरों से भी प्यार होगा। इसके आगे पोएम है कि माई पनिशमेंट फॉर यू इज स्वीटनेस एंड माई डिस्टेंस फ्रॉम यू इज, क्या लिखा होता है, कूलनेस। यू आर टू मी लाइक, यानी उसके लिए अभी एक पोएम कह रहे हैं। तो आप खुद सोचें क्या सोच रहे हैं आप इस वक्त, शेयर करें थोड़ा सा। अब आप सब भी तो अपने ऊपर सोचेंगे ना, एक हैंडीकैप जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। ये है जी स्टेशन, यानी इसकी माँ ने इसको मस्जिद की मोहब्बत ही बिल देखें कि बच्चों को माँ ही ट्रेन करती हैं। अल्लाह जाने माँ थी या बहन थी, किसी ने तो उसको दिया ना। हम कितनी जल्दी अपने बच्चों पर रहम करते हैं, और खास तौर पे आजकल समर, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, जो अमूमी तौर पे घरों का नक्शा समर में बन जाता है, यतियों में बन जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह की बना, मुसलमान घर तो लगते ही नहीं है। और अगर आंखें बंद करके हमारे कहने पे जाके 3 की बजाय 2.5 फर्ज पढ़ के सो भी जाते हैं फजर के, तो मोहब्बत कितनी है। ये माएँ होती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी। ट्यूसडे को हम सुनेंगे कि इमाम बुखारी की माँ ने कैसे उनकी तरबियत की थी। आज तो मैं सोचती हूँ कि बंजर धरती है, आज की धरती माँ है, और जो फसल होती है ना वो औलाद होती है। जिब्रीस ने कहा था कि औलाद में शरीक होऊंगा, अल्लाह ने कहा था हो जा, तो आज हम माँ को भी तो सोचने की जरूरत है ना, उतना लाड करें जितना सह सके। और बस जब हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर चीज रखने को तैयार होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको खुश रखना है, उनको तकलीफ ना पहुंचे, उनको गम ना पहुंचे। आपको होमवर्क ये दे देती हूँ कि ये वीडियो हम दे देंगे आपको नेट पे, ये सिस्टर आयशा डाल देंगे इंशाल्लाह, बगैर किसी कमेंट के, दोस्त के जबरदस्ती के, नॉर्मली एक अच्छे प्लेजेंट माहौल में बैठकर सब घर वाले देखें। ठीक है, आपके कमेंट्स नहीं होने चाहिए ना, उससे पहले कम कम आई विल शो यू दिस दिस दिस, कुछ नहीं, बस बैठे बगैर उसमें आप हो ही ना, बल्कि अगर बेहतर है कि आप पास से उठ ही जाए थोड़ी देर। यकीन करें, शौर जगाएं, अंदर का शौर जागता है। आप कहते हैं कि एक अलार्म तो हमारा अजान के लिए बजता है ना, मोमिन के अंदर भी एक अलार्म होता है, वो खुद ब खुद बोल पड़ता है, चाहे घड़ी बोले ना बोले। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें भी मोहब्बत हो जाए इतनी मस्जिदों से, नमाजों से, और हमारी मस्जिदें भी इसी तरह की आबाद हो जाएं कि वहां जाके वाकई अल्लाह याद आए। इसीलिए अगली आयत को देखिए, आयत 70, वलकद करमन बनी आदम, और हमने बड़ी इज्जत बख्शी औलाद आदम को। है ना, कितनी टू दी पॉइंट आयत। तुम क्यों खो गए, तुम क्यों जानवरों वाली जिंदगी बसर करने लग गए, तुम क्यों अपनी कदर को नहीं पहचान रहे, तुम्हें अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। किस तरह अल्लाह ने इज्जत दी, शक्लो सूरत के एतबार से देख लीजिए। इंसान दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक है। आप कहेंगे नहीं मोर बड़ा खूबसूरत है, तो मोर के पर देख लीजिए और मोर की एफिशिएंसी देख लीजिए, जिल देखें, इंसान की स्किन देखें, जिस्म कितना मोतदल है, जराफे को देखें गर्दन कितनी लंबी, हाथी को देखें कितना मोटा ढोल का ढोल। फिर आप देखिए जज्बात का इजहार हम कर सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी बात कह के बयान कर सकते हैं, माफी ज़मीर अपना बयान कर सकती, बोल सकते हैं। ये बोलना कितनी बड़ी नेमत है। जानवर जो बोलते हैं ना, जिसमें तोते की बात है, अभी रिसेंटली एक सिस्टर ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। उनके घर में तोता था, तो मैं समझी कि शायद दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, तो उसमें से आवाज़ें आ रही हैं तोते की। बाद में पता चला कि रियल तोते थे। तो बताने लगी कि हम जो बोलते हैं ना तो वो कॉपी करता है। तोता खुद अकल से नहीं बोलता, आपको पता, वो बोलता है जो बोले। तो कहती है उसके पास बैठे होते हैं तो हम जो बोल रहे होते हैं वो बोलते हैं। कहते कभी किसी वक्त बेदेहानी में बच्चे को डांट दिया तो वही लफ्ज तोता बोल रहा होता है। तो कहती कि एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह में जब उठ के नीचे आई, ऊपर सोते हैं तो नीचे कमरे में ये होता है, तो कहती जब मैं सीढ़ियों में आई ना तो मुझे बिल्कुल एक इंसान के ना खांसने की आवाज़ आई। तो मैं एकदम वहीं रुकी, क्योंकि उसके पहले कहती कि मेरे हमारे घर में 2 दफ़ा चोरी हुई रिसेंटली, एक ही महीने 1.5 के फ़र्क से, कुछ इसी तरह की बात थी। तो कहती है कि चोरी हुई, इतना खौफ बैठ गया कि सीढ़ियों में आई ना तो मुझे नीचे से खांसने की आवाज़ आई, तो मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा नीचे कोई है। खैर किस्सा मुख्तसर, थोड़ी देर बाद जब थोड़ी हिम्मत करके नीचे आई तो देखा कि तोता खांस रहा था। और कहती क्यों खांसा? कहती रात को मेरे मियाँ को खांसी थी तो वो उधर ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खांस रहे थे, तो बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में सुबह वो भी खांस रहा था। अब ये तो तोता है ना। हम इंसान देखें कि अल्लाह ने हमें बोलने की तौफीक दी। अब इस वक्त भी सोचें, हम सब यहाँ बैठे हैं ना, अगर हमारे साथ वहाँ कुछ चिड़ियाँ तोते होते, कबूतर होते, बिल्लियाँ होती, कुत्ते होते, कुछ भी होते, फिर इन सब को सामने रखकर पूछिए, वलकत करम न बनी आदम। ये सारा जहान अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, और इंसान इतने छोटे काम करके दुनिया से चला जाए। फिर आप देखिए कि हम लिख सकते हैं, जानवर नहीं लिख सकते, अल्लाह की जात है, उन्होंने हमें सिखा दिया। फिर देखिए कुछ जानवर गोश्त खाते हैं तो कुछ सब्जी खाते हैं। जो गोश्त खाते हैं वो चारा नहीं खाते, जो चारा खाते हैं वो गोश्त नहीं खाते। हम इंसान क्या खाते हैं? गोश्त, सब्जी, दाल, साग, जो दिल चाहता है सब खा सकते हैं। फिर आप देखिए कि जानवर जो ना, ये एक खास जगह से देखते हैं, एक खास एंगल से, बस हम चारों तरफ देख सकते हैं। और आपको पता है कि परिंदे जो होते हैं ना, इनको दुनिया हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है, कलर्स नहीं दिखते उनको। हमें कलर्ड भी दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी दिखते हैं। फिर इसी तरह देखिए जब हम लिखते हैं कॉपी पे, कितनी बारीक निब होती है जिससे हम लिख रहे होते हैं, और उसका एक एक लफ्ज़ हम देख देख के लिख रहे होते हैं, जानवर नहीं लिख सकते। लेकिन अफसोस, आदम इंसान ने तो आदम को और इंसान को बड़ी इज्जत दी थी। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी, और हम उठाए फिरते हैं इन्हें खुशकी और समंदर में। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाती, और हमने इनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया। वफद्दलनाहुम अला कसीरे मिम्मन खलकना तफदीला, और हमने इनको फजीलत दी अपनी बहुत सी मखलूक पर, बहुत बड़ी फजीलत। यानी एक ही इंसान के साथ इतना कुछ करवा दिया कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। देखिए इंसान को आदम को फरिश्तों ने जो सजदा किया था, वो असल में वलकत करम न बनी आदम की एक ताबीर थी। असल में ये इस बात का इजहार था कि फरिश्ते कुछ चीज़ों में इंसान से आगे हैं, लेकिन इज्जत और मर्तबे के एतबार से इंसान बेहतर है। तो इंसान की इज्जत है, लेकिन इंसान ने क्या किया? इसका बेहतरीन अमल आपको दिखेगा सूरह 3 में। व तीन व जैतूनी व तूरी सीनीन व हाजल बलद अल अमीन लकद खलकना अल इंसान फी अहसनी तकवीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इंसान बाइज्जत कब है? अब यहाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे इंसान की इज्जत पे। जब इंसान नंबर एक पैदा करने वाले के साथ जुड़ जाता है, यानी अल्लाह को मानने वाला, ईमान बंदे को इज्जत देता है, काफिर की कोई इज्जत नहीं है। साफ जाहिर है कि जो बच्चा अपनी माँ को ना माने उसको दूसरा क्या इज्जत देगा। फिर जब रब की बात माने, और जब एक इंसान खुद गिर जाए, 100 बच्चों को कत्ल करके तेजाब में पिघला के खत्म कर दे, तो फिर उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल का एक जुमला याद आ गया, शायद आपको इस मौके पे समझ ज्यादा अच्छी तरह आ जाए उस बात से। किसी ने उन पर एतराज़ किया कि मुसलमान कितने जालिम हैं, चोर का हाथ काट देते हैं, उन्होंने कहा कि, यानी जो नॉन मुस्लिम था उसने कहा कि मुसलमान बड़े गैर मुहज़ब होते हैं, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके ख्याल में चोर एक मुहज़ब आदमी है कि जिसका हाथ ना काटा जाए? मतलब ये था कि चोरी करके उसने अपना आप खत्म कर दिया कि मेरी तो ये इज्जत ही नहीं है। और हाथ क्यों कटता है आपको पता? क्योंकि वो हाथ काबिले इज्जत नहीं रहा, वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी दूसरे के माल पे चला गया। तो जब कोई इंसान इस दुनिया में आने का मकसद नहीं समझता तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। और याद रखिए कि इस आयत में एक बहुत बड़ी हकीकत भी है, इंसान की तख्लीक की मेराज, क्लाइमेक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है। और वो क्या है कि इंसान को अल्लाह ताला ने कुन से नहीं, अपने हाथ से, मराहिल से गुजार कर पैदा किया। आज कायनात के अंदर आपको देखें जितनी भी चीजें हैं ना, ये बेजान है, वो बिग बैंग से पैदा हुई या किसी और से इसको छोड़ दें, हमारा मौजू नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि इंसान को एक मकसद के साथ पैदा किया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जिस तरह जमीन खत्म होगी, इस पे क्यामत आएगी, क्या दूसरे सियारे और सितारे उनके साथ भी ऐसा होगा? तो उसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि जमीन की जो कयामत है ना, वो क्यों इतनी हाईलाइटेड है? हालांकि हर दिन सियारे सितारे टूट रहे हैं, जैसे वो टूट गए उसकी कयामत आ गई। जमीन के ऊपर जो कयामत आनी है उसकी वजह क्या, किस पे इंसान बसता है? अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, उसको एक खास मकसद के साथ पैदा किया और ये सोच दे के दुनिया में भेजा कि तुम इस दुनिया में जाओगे तो अल्लाह का हुक्म पूरा करोगे। वही बात कर लीजिए कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। इंसान को अल्लाह ने खिलाफत का काम दिया था, ये था असल में करम नबनी आदम। अल्लाह का नॉमिनेटेड, अल्लाह सुबहान तआला का एम्बेसडर, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में आम करने वाला ये इंसान है। और जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता। यकीन करें, जब आप जमीन पे उड़ चलते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, समंदरों के ऊपर से गुजरते हैं, पानियों के पास से गुजरते हैं, उस वक्त आपको अपने रब की कदर आती है, इतना दिल खुलता है। अक्सर ऐसा होता है, खास तौर पे जब ट्रिप्स पे होते हैं और ट्रेवलिंग होती है। तो इस दफा भी मैंने एक जगह ट्रिप में शेयर की थी ये बात कि जब जहाज में थी तो पूरा वक्त बाहर मंजर बदल रहे हैं और कभी कुछ कभी कुछ, और मैं मुसलसल खुद को कह रही थी कि उस अल्लाह के लिए मैं सफर कर रही हूँ जिसका ये आसमान है, जिसका सूरज है, जिसका चांद है, नीचे समंदर इतना बड़ा है। हम एक ऐसी जगह गए कि बिल्कुल जहाज लैंड होने वाला लेकिन नीचे समंदर, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा, गई थी पहले वहां भी लेकिन कुछ इतना गौर नहीं किया, शायद रात होगी, बिल्कुल जहाज नीचे 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 आ गया, फील हो रहा है कि जहाज उतर रहा है लेकिन पूरा समंदर। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये हो कर। और मैं यूं लाशौरी तो अभी यूं देख रही थी खिड़की में कि कहीं कोने से कोई कोना दिखे, इतने में व्हील्स भी खुल गए, फिर तो मेरा दिल बंद हुआ, मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। बिलीव मी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था, व्हील कब खुलते हैं जब बिल्कुल आपको नीचे चीजें दिख रही होती हैं, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हम पानी पे लैंड करने लगे। और एकदम बस रनवे, समझे कि वो रनवे ही था जो खुश्की पे आया और जहाज उतर गया। तो उस वक्त मैंने इस चीज को फील किया कि हर दफा जहाज में ये जो सिक्योरिटी वीडियो दिखाते हैं, इमरजेंसी और दिस एंड दैट और फुला और फुला, अगर कभी ऐसा हो जाए तो कौन हमें बना देगा? समंदर में जाके डूबेंगे। लेकिन आप देखिए, इतनी बड़ी जात जिसने मुझे और आपको पैदा किया, और इतना सा इंसान है जो उस रब की बात नहीं मानता, फिर अकड़ देखे अंदर हमारे कितनी है, फिर भूल जाते हैं। तो जब आप अल्लाह के लिए निकलते हैं ना, अल्लाह के बंदों से मिलते हैं, और जो उनकी मुश्किलें और जो उनके गम और जो उनकी खुशियां और उनके जज्बात और उनकी तलब और उनकी हिदायत के लिए तड़प, दिल करता है कि इंसान को 100 जिंदगियां मिल जाएं या एक इंसान के 100 वजूद बन जाए और दुनिया में हर जगह पे अपने आप को सर्व करवा दे कि अल्लाह के बंदों को फायदा हो जाए। इसके बरक्स आप देखिए कि अब आप करम ना बनी आदम के आगे लिखिए कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। खाता है जानवर, सोता है जानवर, इंसान भी खा ले सो ले, क्या बड़ी बात हुई। बच्चे पैदा करते हैं जानवर, इंसान ने भी कर लिया। घर बनाते हैं जानवर, इंसान ने बना लिया तो क्या बड़ी बात कर ली। फर्क क्या है इंसान और जानवर का? कि जानवर के पास इख्तियार नहीं है और जानवर के पास शऊर नहीं है। जो कह दो वही करेगा, जो करने कर, उससे करवा लो वही करेगा। इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है। जब इंसान अकल के इस्तेमाल से कोरा हो जाता है ना, तो वो जानवर होता है। तीन चार दफा तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि उलाइक कल अनाम बल हुम अदल, सूरत सूरत अल अराफ का मुझे याद आ रहा है इस वक्त, कि ये तो जानवरों जैसे हैं बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे हैं। तो जब एक रब ने हमें पैदा किया है तो फिर उसके आगे झुकना है। मुझे ऐसे लगता है कि हम अभी तक जीना ही नहीं सीखे और जाने की बारी आ गई। सच है कि नहीं? ऐसे नहीं लगता कि हमने बस अल्लाह को पहचाना ही नहीं है? बिलीव मी, हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं। वो कोई और खुदा था जिसके साथ हम जीते और मरते थे। कुरान के बाद एक और साथ से मुलाकात होती है, और ये है वो जात जिससे कयामत के दिन मुलाकात होनी है। तो आज अपनी जिंदगी को पहचानना है। खलक में मन खलक ना तब्दीला, इससे मिलते जुलते अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में सिखाए। फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को तकलीफ में देखे, मुसीबत सदा, बीमार, परेशान, झगड़ रहा है, कोई दीन से दूर है, हिदायत से दूर है, बेदीन है, नंगे कपड़े पहना हुआ है, कोई काम कह ले, तो फिर दुआ मांगो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दलनी अला कसीरे मिम्मन खलक तफदीला। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं जिसने मुझे फजीलत दी उस चीज से जिसमें इसको मुब्तला किया। तो अल्लाह ताला बंदे को उस तकलीफ से बचा लेता है। तो ये सारी चीजें सोचते हुए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमें अपनी जिंदगी में खैर के साथ रखे। और इसी को आप देखेंगे कि अब आगे आखिरत से जोड़ा जा रहा है, वही मजमून जो पीछे भी हमने सूरत के आगाज में बड़ी डिटेल से पढ़ा था, दोबारा आ गया कि चलो दुनिया में तो जी चुके, अब देखो कि मौत के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। यौम नदउ कुल्ल अनासिन बि इमामिहिम, जिस दिन हम बुलाएंगे तमाम इंसानों को इनके सरदारों के साथ, इनके इमामों के साथ। फिर क्या होगा? फमन ऊतिया किताबहु बियमीनी, फिर जिसको दिया गया उसका नाम है आमाल उसके दाएं हाथ में, फाउलाइका यकरऊना किताबहुम, तो ऐसे लोग पढ़ेंगे अपने आमाल नामे को खुशी के साथ, वला युसलमून फतीला, और इन पर जुल्म न किया जाएगा धागे बराबर। और अगली आयत, लेकिन वमन का नफी हाजी आमा, और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा, फहुव फिल आखिरति आमा, तो वो तो आखिरत में भी अंधा होगा, वादल्लु सबीला, और राह से ज्यादा भटका हुआ। इस आयत की दो तरह से तफसीर होती है। मैंने जान के लफ्ज इमाम के तर्जमे में लीडर या सरदार या इमाम पढ़ा। एक तो इसका आम मफहूम है कि क्यामत के दिन हर बंदे को उसकी लीडर के साथ बुलाया जाएगा। और ये लीडर कौन होगा? जिसकी लीडरशिप में या जिसकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारी होगी। हर गिरोह का रहनुमा या बड़ा मजहबी लीडर है तो उनके मजहबी रहनुमा जिनको फॉलो करते थे, जिनकी तसल्लियों पे आगे चलते थे, और दुनिया भी जिनके साथ गुजारी होगी उनके साथ होगी। एक तो आम मानी है। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि इससे इमाम से मुराद नबी भी है, हर एक को उसकी नबी के साथ बुलाया जाएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों मानों में। लेकिन अगर इसी आयत का अगला हिस्सा साथ जोड़ें जिसमें नामे अमाल की बात है, पढ़ने की बात है, तो फिर इमाम से मुराद यहां हमारे सबसे बड़े सरदार हमारे नामे अमाल है, जो पीछे पढ़ चुके हैं कि इकरा किताब कफा बे नफ्सी कल यौम अलैका हसीबा। तो इंसान के नामे अमाल को उसका इमाम क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल इंसान अलज़मनाहु तायरहु फी उनुकी, गर्दन में लटका हुआ है ना, तो गर्दन में लटकी हुई चीज कहाँ होती है? सामने होती है, इसलिए इसको इमाम कहते हैं। हम जो कर रहे हैं ना वो बन रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी का नक्शा बिल्कुल वही बन रहा है जो हम अपने नामे अमाल में लिख रहे हैं, और जिसको दाएं हाथ में मिलेगा वो अपनी जिंदगी के कारनामे वहां पढ़ लेंगे, खुली किताब की तरह होगी। आप देखिए कि ये बार बार बात कुरान में आती है, आगे तो बहुत ही ज्यादा आएगी। सूरत अल हाका में भी हम पढ़ेंगे आयत 19 से 28 में, सूरत इंशिकाक में आयत नंबर 7 से 13 में भी ये बात डिटेल से आएगी कि जिनको अच्छे नामे अमाल दिए जाएं, जिनके नामे अमाल अच्छे होंगे वो खुशी खुशी उसको देखेंगे, दूसरों को दिखाएंगे। پچھلی آیت میں ولقد کرمنا بنی آدم تھا، یہاں نام اعمال کی بات ہو گئی، ربط کیا دونوں میں؟ وہ لوگ جن کو یہ عزت راس آ گئی، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس عزت کو قبول کیا اور ایک اعلی مقصد کے لیے زندگی بسر کی، قیامت کے دن ان کو ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور آگے آگے ان کے نام اعمال ہوں گے. سورت قاف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے نا تو ان کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. تو علماء وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ جا کے لکھاؤں گی کہ یہ انسان کے کرامن کاتبین ہوں گے، اس کے اچھے عمل لکھنے والا فرشتہ اور اس کے برے عمل. تو قبر سے نکلتے پھر اس کو لے کر چلیں گے، اس لیے بھی اس کو امام کہا گیا کہ انسان قیامت کے دن اپنے نام اعمال کی روشنی میں چلے گا، جو دنیا میں کیا تھا وہی وہاں ملے گا. چلیے خود سے پوچھتے ہیں میرا نام اعمال کیسے. ہر ایک کو خود بھی پتا ہوتا ہے اور پتا ہونا چاہیے، کہ ہم اتنے بھولے لوگ نہیں ہیں، سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں اپنے نام اعمال میں کیا لکھ رہی ہوں. خود سے پوچھیے اب ان 15 سپاروں کے دوران، کیا میرا دائیں ہاتھ کا اعمال نامہ زیادہ بھاری ہوا ہے بائیں ہاتھ سے؟ کیا فرشتے کو زیادہ بار لکھنی پڑتی ہیں یا دائیں طرف لکھنی پڑتی ہیں؟ یہ سب چیزیں سوچتے جائیں اور پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی جو اگلے 15 پارے ہیں نا، یہ نیکیوں والے ہوں، خیر والے ہوں، ہم زندگی گزارے. اور دیکھیے یہ کس طرح پتا چلے گا؟ یہ آپ کے چہروں سے پتا چلے گا. جب ایک انسان زندگی کا مقصد پا جاتا ہے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کے چہرے پہ سب سے زیادہ اسمائل ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا چہرے پہ، ایک ہی دکھ رہ جاتا ہے، صرف ایک دکھ، ایک اس طرح کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم. تو دعا کریں کہ ہم اس طرح کے معاملے پہ ہوں. پھر یہاں لفظ فتیل آیا ہے، فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل اس باریک دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ہوتا ہے، ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے نا کھجور میں، ایسے ڈیپتھ میں. تو خشک کھجور ہوتی ہے بعض دفعہ، تو جب آپ چھیلتے ہیں تو ایک چھلکا سا بھی آ جاتا ہے. گیلی کھجور ہوتی ہے نا، اس کا کھجور کے ساتھ لگا ہوتا ہے. سوکھی کھجور کا، کھجور سوکھ سوکھی ہوتی ہے تو وہ چھلکا اس کی گٹھلی کے ساتھ لگ جاتا ہے. اتنی تھوڑی سی چیز ہے، فرمایا وہ بھی دنیا میں جو کی ہوگی وہاں دیکھو گے اور تمہیں وہاں ظلم نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں اندھا ہونا، آخرت میں اندھا ہونا، یہ کیا؟ دنیا میں ہدایت کے راستوں کو دیکھنے سے اندھے تھے، تو آخرت میں جنت کی راہ نظر ہی نہیں آئے گی. دنیا میں جو اندھا بنتا نا، یہ اختیاری تھا، بائی چوائس تھا، اس کی اصلاح ممکن تھی، لیکن آخرت کا اندھا پن انریکیوریبل ہے، وہ اضطراری ہوگا، وہاں کوئی علاج نہیں ہوگا. دنیا کے اندھے پن کا علاج موجود ہے الحمدللہ، وہاں کے اندھے پن کا کوئی علاج نہیں ہوگا. پھٹکتے پھٹکتے دور سے دور چلتے جائیں گے. تو خود سے پوچھیں کہ کیا میری زندگی ہدایت کے قریب ہے یا ہدایت سے دور ہے؟ اور جتنا زیادہ سوچتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سوچنے کی توفیق بھی دے گا، کیونکہ اس دنیا میں اندھے بن کے نہیں جینا، وہاں پہنچیں گے تو خیر کی بات ہوگی. اسی طرح آپ کو پیچھے بھی فرق بتایا تھا، ایک لفظ ہوتا ہے آما، جیسے یہاں ہے دل کا اندھا پن ہوتا ہے، اوم یون اور اوم ہن کا فرق یاد کر لیجیے. تو یہاں آما سے مراد دل کا اندھا، حق سے اندھا، سمجھنے سے اندھا، قبول کرنے سے محروم، تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے اندھے پن سے بچا کے رکھے. کوئی بات جو اس کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آئی ہو؟ ادھر ہم بریک لیں گے انشاءاللہ، باقی سب بریک کے بعد کریں گے تھوڑا سا. جی جی آپ نشی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ بچوں سے بہت زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے، میرے پر الزام نہ لگائیں. پیار کے اظہار میں بگاڑنا نہیں ہے، بچوں سے تو ٹوٹ کے پیار کریں. جی بچوں سے پیار کریں، لیکن ان جو پیار ان کو اللہ کے قریب کریں، ان کی غلط نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ جی اور کوئی؟ جی
I'm sorry, I just want to end.
यस, मुझे पूरा दिन नहीं भूला, रियली। जी बात करें। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें शैतान के चंगुल से बचा ले और हम अल्लाह के बन जाएं। मैं अक्सर सोचती हूँ ये बात कि जीना तो एक ही बार है ना। देखिए, जो अमल का जीना वो तो एक ही है ना, आखिरत का जीना तो मज़े के लिए जीना है ना। उसमें तो जो अल्लाह ने देना है वो तो अल्लाह ने देना ही है। कितने को दिन की ज़िंदगी रह गई है, हर एक अपनी आप को पूछे, किसी को नहीं पता। लेकिन हमेशा ये सोचें, चलो कुछ दिन और मेहनत कर लूँ, कुछ और कर लूँ। आप देखिए, कोई काम है, अगर आप पिछले सब, ये सारा सबक पीछे से चल रहा है, शैतान की धमकियाँ, शैतान के वार, और उसके बाद अब इंसान की इज्जत। ये इंसान की इज्जत नहीं है कि शैतान इतनी धमकियों के बावजूद अपना जोर इंसान पे नहीं लगा सकता। तो शैतान से ही सीख लें कि शैतान अपना गोल कैसे हासिल करता है। प्लानिंग है, मेहनत है, अनथक कोशिश करता है, फिर स्टेप्स में काम करता है, ग्रेजुअली काम करता है, मौका मुनासिबत देख के करता है, छोटी छोटी चीज़ों में लेकर फिर बड़ी चीज़ में लेके जाता है। क्या हम इसी तरह से नेकियों के काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ सोचने की बात है। देखिए, खुद को ज़ाया ना करें, हर दिन खुद को शीशे में खड़े होकर कहा करें, मैंने खुद को ज़ाया नहीं करना, मैंने ज़ाया नहीं करना। गेट मोर फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से कुछ ले के जाए। जब दुनिया से चले जाएं तो लोगों को थोड़ा फर्क लगे कि कोई गया दुनिया से। हम चले जाएं, लोग कहें चले शुक्र है एक जगह खत्म हुई। जी पीछे से आप ही रहो। वालेकुम अस्सलाम। जी आप 26 इयर्स की भी बात कर रहे हैं, तो वो शायद उन्होंने ही बताया भी होगा कि बाप भी बीमार है और बेटा भी बीमार है, गिरे हैं, और शायद उनको ऐसी चोट लगी है कि अनरिक्योरेबल है और डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे, घर ले जा रहे हैं। और 25 साल या 26 साल ये बता रही है, तो 25 साल बेटे को कैंसर डायग्नोज हो गया, दोनों हॉस्पिटलाइज हैं और वो अब उनको मिलने जा रही हैं। कैन यू बिलीव, क्या जो किसी के साथ हो सकता है ये मेरे साथ नहीं हो सकता। अल्लाह हम सब को आफियत में रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ्वा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, आफियत की दुआएं मांगा करें। ये लिखती हैं कि उस्ताजा जी, इस कोर्स से पहले मेरे दाएं बाजू का फरिश्ता बहुत सुस्त था, लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़ा एक्टिव हो गया है। अब लगता है कि वो जायज तनख्वाह ले रहे हैं, अल्लाह सुबहान तआला से कुछ ना कुछ काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या तनख्वाह देते हैं उसको? बहरहाल, अपने फरिश्तों को देखने की ज़रूरत है, खुद देखें। आप फील करेंगे कि जब आप इन चीज़ों में सोचते हैं तो बात होती है। देखिए, जिस दिन सुबह उठ के आपने प्लानिंग की होती है ना कि आज क्या करना है, उस दिन आप बहुत कुछ कर लेते हैं, और जिस दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं ना, ढीला ढीला, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यकीन करें, यहाँ आप आते हैं तो हो सकता है बाकी दिन में भी कुछ कर ही लेते होंगे जाके, और जिस दिन सुबह उठेंगे 11-12 बजे, तो वो पूरा दिन जाया हो जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है हमारा। जी ये लिखती हैं कि अल्लाह अकबर, माई मदर वेंट टू सी वाइफ ऑफ हर ब्रदर हु हैज हॉस्पिटलाइज्ड, बट शी केम बैक हर सेल्फ हाफ पैरालाइज्ड, अ बिग लेसन, लेटर डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर। किसी को देखने गई हैं और खुद बीमार हुई और पता चला कि ब्रेन ट्यूमर। कितना कमजोर है इंसान, मैं कहती हूँ कभी बैठ के इंसान सोचे तो सही, कितना कमजोर है इंसान। जी ब्रेक ले लें यहाँ पे, ठीक है इंशाल्लाह ताला ब्रेक लेके आइए, फिर एक बड़ी मजे की वीडियो आपको दिखाती हूँ, छोटी सी है लेकिन ब्रेक के बाद।